एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर, कैटरियोना केली की रशियन लिटरेचर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, नाम भले ही वेरी शॉर्ट हो लेकिन इसमें बातें काफी गहरी हैं।
बिल्कुल। और रूसी साहित्य देखिए आज भी उतना ही अहम है, शायद पहले से भी ज्यादा।
सही कहा। जब हम रूस के बारे में सोचते हैं तो अक्सर क्या आता है जहन में? वही टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की।
हाँ, या फिर वो बर्फीले मैदान, गहरी उदासी वाली कहानियां, है ना?
बिल्कुल, वही मतलब घिसी पिटी छवियां। लेकिन ये किताब, केली की किताब, इन्हीं पर सवाल उठाती है।
वो कहती हैं कि रूसी साहित्य सिर्फ कुछ महान लेखकों की वो आध्यात्मिक खोज या दुख दर्द की कहानी नहीं है।
तो क्या है फिर?
वो कहती हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, ज्यादा विविध, और हाँ, राजनीति और सत्ता से भी इसका गहरा नाता है।
अच्छा, तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये पड़ताल इसी बारे में है। हम केली की किताब के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि रूसी साहित्य के बारे में हमारी ये जो आम समझ है, ये बनी कैसे,
चाहे ये सब मिथक है या इसमें कुछ सच्चाई भी है,
और कैसे साहित्य किसी देश की पहचान को गढ़ने में, यहाँ तक कि साम्राज्य बनाने में भी अपनी भूमिका निभाता है।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी बात लेखिका की हो जाए। कैटरियोना केली कौन है ये?
हाँ, कैटरियोना केली ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रूसी भाषा और साहित्य की प्रोफेसर है, मतलब इस विषय की जानी मानी विशेषज्ञा।
अच्छा।
पर उनकी खासियत सिर्फ यही नहीं, उन्होंने रूसी संस्कृति पर कई अहम किताबें लिखी हैं, जैसे पीटर्सबर्ग, अ कल्चरल हिस्ट्री है, या फिर कॉमरेड पावलिक।
हाँ, मैंने सुना उसके बारे में। वो सोवियत दौर के किसी बच्चे की कहानी है ना?
जी हाँ, और जो बात केली को औरों से अलग करती है वो है उनका नजरिया। बहुत व्यापक है, वो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं है।
मतलब
वो साहित्य को इतिहास, समाजशास्त्र, यहाँ तक कि जेंडर स्टडीज के चश्मे से भी देखती हैं। वो पूछती हैं कि साहित्य समाज को कैसे दिखाता है, सत्ता के साथ इसका क्या रिश्ता है, रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डालता है।
यानी सिर्फ टेक्स्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट भी देखती हैं।
बिल्कुल, और वो उन पहलुओं पर भी ध्यान देती हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे रूसी बचपन का इतिहास हो गया, या फिर विजुअल कल्चर।
विजुअल कल्चर, अच्छा।
और खास तौर पर उन्होंने रूसी साहित्य में महिलाओं की भूमिका और वो लिंग के सवालों पर बहुत काम किया है।
जी।
और यही बात उन्हें वो हिम्मत देती है कि वो उस पारंपरिक सोच को चुनौती दे सके जो मानती है कि रूसी साहित्य मतलब बस कुछ महान पुरुष लेखक।
यानी वो सिर्फ मशहूर नाम नहीं गिनाती बल्कि हाशिए पर जो आवाजें हैं उन्हें भी सामने लाती हैं। दिलचस्प है।
तो अब आते हैं किताब पर, रशियन लिटरेचर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जैसा हमने कहा, ये कोई सीधी सादी गाइड बुक टाइप नहीं है
कि फला साल में ये हुआ, फला ने ये लिखा, वैसा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादा विश्लेषणात्मक है। इसका असली मकसद है रूसी साहित्य के बारे में हमारी सोच को एक तरह से झकझोड़ना।
अच्छा, कैसे?
वो जो बनी बनाई धारणाएं हैं ना हमारे मन में कि रूसी साहित्य मतलब भारी भरकम, दार्शनिक, दुख और दर्द से लबरेज।
हाँ हाँ, और वो रहस्यमयी रूसी आत्मा की तलाश।
बिल्कुल, केली कहती है जरा रुकिए, तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है और रंगीन भी।
तो उनका मुख्य तर्क क्या है फिर? वो क्या कहना चाहती हैं?
देखिए, उनका मुख्य तर्क ये है कि रूसी साहित्य सिर्फ टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की जैसे कुछ गिने चुने महान पुरुषों की आध्यात्मिक यात्राओं तक ही सीमित नहीं है।
नहीं,
तो ये एक बहुत बड़ा मैदान है, विविध है, लगातार बदलता हुआ। इसमें महिला लेखक हैं, गैर रूसी जातीय समूहों के लेखक हैं जो रूस के साम्राज्य का हिस्सा थे।
अच्छा, वो भी हैं?
हाँ, और लोकप्रिय विधाओं के लेखक भी हैं, जैसे जासूसी कहानियां या साइंस फिक्शन। इन सबको अक्सर अकादमिक दुनिया, आप देखिए, या तो कम आंकती है या पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है।
यानी वो पूरे कैनन पर ही सवाल उठा रही हैं।
हाँ,
कैनन मतलब साहित्य की वो लिस्ट जिसे हम महान या जरूरी मानते हैं।
बिल्कुल, वो यही पूछते हैं कि ये कैनन बना कैसे, किसने तय किया कि कौन महत्वपूर्ण है और कौन नहीं,
और क्या इस चक्कर में कुछ आवाजें दब गईं?
हाँ, और किताब ये भी दिखाती है कि रूसी लेखक कोई हवा में उड़ने वाले संत या भविष्यवक्ता टाइप नहीं थे जैसा अक्सर मान लिया जाता है। वो अपने समय के समाज और राजनीति में पूरी तरह शामिल थे, उनके अपने पूर्वाग्रह थे, सत्ता के साथ उनके रिश्ते भी वो काफी जटिल थे।
तो मतलब साहित्य कोई साफ आईना नहीं है जिसमें समाज बस वैसा का वैसा दिख जाए।
नहीं, केली उसे एक कार्यशाला की तरह देखती है, एक वर्कशॉप जहां समाज, पहचान, यहां तक कि राष्ट्र के विचार गढ़े जाते हैं,
उन पर बहस होती है। बिल्कुल, ये तो काफी सोचने वाली बात है।
हाँ, और इसी सोच को वो किताब के अलग अलग अध्यायों में खोलती है। कुछ मुख्य हिस्सों पर बात करें?
हाँ, करते हैं। जैसे पहले अध्याय में वो जमीन की बात करती हैं, रूस का भूगोल, उसका लैंडस्केप।
अच्छा, लैंडस्केप। आमतौर पर तो हम उसे कहानी का बैकग्राउंड नहीं मानते हैं ना?
वो बर्फीले मैदान, विशाल नदियाँ।
हाँ, बस बैकड्रॉप। लेकिन केली कहती हैं कि ये सिर्फ बैकड्रॉप नहीं है, रूस का भूगोल साहित्य में एक सक्रिय किरदार रहा है।
बकायदा
सक्रिय किरदार?
कैसे?
लेखकों ने इसका इस्तेमाल किया है राष्ट्रीय पहचान गढ़ने के लिए, साम्राज्य के विस्तार को सही ठहराने के लिए, या फिर सामाजिक तलावों को दिखाने के लिए।
कोई उदाहरण है इसका?
हाँ, कई है। जैसे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को की छवि ही ले लीजिए। पुष्किन की मशहूर कविता है द ब्रॉन्ज हॉर्समैन। उसमें पीटर्सबर्ग एक बनावटी पश्चिमी शहर है जो प्रकृति पर जबरदस्ती थोपा गया लगता है।
और मॉस्को?
वहीं मॉस्को को ज्यादा असली, ज्यादा रूसी माना जाता रहा है। या फिर टॉल्स्टॉय की अन्ना कैरेनिना में गांव की जमींदारी का चित्रण देखिए। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो शोषण और सामाजिक बंधनों का केंद्र भी है।
सही बात।
इसी तरह काकेशियस या साइबेरिया, ये सिर्फ जगह ही नहीं है, ये रूसी साम्राज्य के विस्तार, निर्वासन और संघर्ष के प्रतीक बन गए साहित्य में।
ये तो सोचने वाली बात है कि जमीन भी कहानी कहती है।
अच्छा, फिर एक और अध्याय है जो रूसी लेखक की छवि से जुड़ा है, वो जो भविष्यवक्ता या शहीद वाली छवि है।
हाँ, कि वो सच्चाई के लिए सत्ता से टकराता है।
ये छवि तो बहुत आम है।
है तो।
लेकिन केली कहती हैं कि ये छवि भी घड़ी गई है, बनाई गई है 19वीं सदी में, जब राजनीतिक अभिव्यक्ति के दूसरे रास्ते बंद थे, तब लेखकों ने एक तरह से समाज की आवाज बनने का काम संभाला।
अच्छा।
लेकिन ये हमेशा सत्ता के खिलाफ ही नहीं थे, कई बार राज्य के साथ इनके रिश्ते मिले जुले थे। पुष्किन को ही देखिए।
हाँ।
उनकी मौत के बाद उन्हें कैसे राष्ट्रीय नायक बना दिया गया। या फिर सोवियत दौर में लेखक संघ बना जिसने तय किया कि कैसा साहित्य लिखा जाना चाहिए, जिसे समाजवादी यथार्थवाद कहा गया।
हाँ, सोशलिस्ट रियलिज्म, जिसका मकसद था समाजवाद के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना।
बिल्कुल। तो लेखक की ये जो ऊंची कुर्सी थी, वो हमेशा सिर्फ नैतिक बल पर नहीं टिकी थी, ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी थीं।
और इसमें वो इंटेलिजेंसिया यानी बुद्धिजीवी वर्ग की भी भूमिका रही होगी।
यकीनन। और सेंसरशिप के माहौल में लेखकों ने एक खास तरीका भी निकाला था, ईसप की भाषा, इसोपियन लैंग्वेज।
ईसप की भाषा, वो क्या है?
मतलब सीधे सीधे अपनी बात कहने के बजाय इशारों में कहना, रूपकों में, ताकि सेंसर की पकड़ में ना आए। पंक्तियों के बीच में पढ़ना जिसे कहते हैं।
वाह, यानी बंदिशों ने भी लिखने के नए तरीके पैदा कर दिए। कमाल है। इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है, रूस एक साम्राज्य था, साहित्य का इससे क्या लेना देना था?
ये एक और बहुत अहम सवाल है जो केली उठाती हैं। वो कहती हैं कि रूसी साहित्य की बात करते ही हम साम्राज्य के सवाल से बच नहीं सकते।
क्यों?
क्योंकि जो साहित्य हम ज्यादातर पढ़ते हैं वो शाही केंद्र का साहित्य है, मॉस्को और पीटर्सबर्ग का। इसने साम्राज्य के भीतर रहने वाले दूसरे जातीय समूहों की आवाजों को अक्सर हाशिए पर रखा है।
कौन से समूह?
जैसे यूक्रेनी, पोलिश, यहूदी, कॉकेशियाई लोग, उनके अनुभव अक्सर दबा दिए गए।
तो क्या साहित्य ने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया या उसकी आलोचना की?
केली दिखाती हैं कि दोनों काम हुए, कभी साम्राज्य का गुणगान हुआ तो कभी उसकी आलोचना भी हुई। रूसीपन की परिभाषाएं अक्सर इन दूसरों के विरोध में गढ़ी गई।
अच्छा।
गोगोल का तारस बुल्बा उपन्यास है, उसमें यूक्रेनी कॉसैक्स का चित्रण है लेकिन रूसी नजरिए से। कई रचनाओं में यहूदी किरदारों का चित्रण काफी समस्याग्रस्त रहा है। ये सब दिखाता है कि साहित्य और राष्ट्रीय पहचान का रिश्ता कितना पेचीदा है और सत्ता से जुड़ा हुआ है।
और इसी सत्ता के ताने बाने में महिलाओं की क्या जगह थी? आपने कहा था कि केली जेंडर पर खास ध्यान देती हैं।
हाँ, ये उनकी किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो बताती हैं कि महिलाएं कोई नई नई नहीं लिख रही थीं, वो 18वीं सदी से ही रूसी साहित्य में सक्रिय थीं।
सच में? कौन थी?
कैथरीन द ग्रेट खुद लिखती थीं, कैरोलिना पावलोवा जैसी कवयित्रियां थीं, लेकिन उनके काम को आप देखिए व्यवस्थित तरीके से नजरअंदाज किया गया, उन्हें पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं मिला।
और वो जो मशहूर महिला किरदार हैं, जैसे अन्ना कैरेनिना या तुर्गेनीव की नायिकाएं,
कैली उनका भी विश्लेषण करती हैं। वो कहती हैं कि अक्सर ये किरदार भी पुरुष लेखकों की चिंताओं और उस समय के सामाजिक बंधनों को ही दिखाते हैं, मतलब महिलाओं की अपनी आवाज़ कम सुनाई देती है। बेशक 20वीं सदी में स्थिति बदली। अन्ना अखमातोवा और मरीना त्सवेतायेवा जैसी कवयित्रियों ने स्त्री की आवाज़ को बहुत दमदार तरीके से पेश किया, लेकिन कैली हमें याद दिलाती हैं कि हमें पूरी परंपरा को महिलाओं के नज़रिए से दोबारा देखने की ज़रूरत है।
सही कहा, इतिहास को सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। अच्छा, अब अगर 20वीं सदी की बात करें, क्रांति, सोवियत संघ, वो तो बड़े उथल पुथल का दौर था, साहित्य पे क्या असर पड़ा उसका?
जबरदस्त असर। कैली उसे चरम की कला कहती हैं, एन आर्ट ऑफ एक्सट्रीम्स।
चरम की कला?
हाँ, एक तरफ आंद्रे बेली जैसे लेखकों ने भाषा और शैली के साथ बड़े मतलब रेडिकल प्रयोग किए, दूसरी तरफ क्रांति हुई, गृह युद्ध हुआ, फिर स्टालिन का दमनकारी शासन आया।
हाँ, वो तो भयानक दौर था।
सोवियत व्यवस्था ने साहित्य को कंट्रोल करने की कोशिश की, समाजवादी यथार्थवाद थोपा। लेकिन देखिए, इसी दौर में मिखाइल बुल्गाकोव ने द मास्टर एंड मार्गरीटा जैसा शाहकार लिखा, भले ही वो उनके जीते जी छप नहीं सका।
और वो असंतुष्ट लेखक भी तो थे, सोल्जनित्सन जैसे।
हाँ बिल्कुल, और भूमिगत प्रकाशन शुरू हुए जिन्हें सामिसदात कहते थे, और विदेश में प्रकाशन तामिसदात। तो केली का तर्क ये है कि सोवियत व्यवस्था ने साहित्य का सिर्फ दमन ही नहीं किया, उसने एक अजीब सा, एक अनोखा साहित्यिक माहौल भी बनाया, जिसके अपने नियम थे, अपने नायक थे और अपने विद्रोही भी। ये सिर्फ काला और सफेद वाला मामला नहीं था।
और फिर जब सोवियत संघ बिखर गया, उसके बाद क्या हुआ? क्या सेंसरशिप हटने से साहित्य में एकदम से बाहर आ गई?
केली कहती हैं ऐसा नहीं हुआ, कम से कम सीधे तौर पर तो नहीं। सेंसरशिप हटी, ये सच है, लेकिन साथ ही राज्य का जो संरक्षण था वो भी हट गया।
अच्छा।
अब लेखक को बाजार में टिके रहने की चुनौती का सामना करना पड़ा। वो जो भविष्य वक्ता वाली खास भूमिका थी वो खत्म हो गई। साहित्य का क्षेत्र बहुत बट गया, खंडित हो गया।
तो किस तरह का साहित्य आ रहा है अब?
विक्टर पेलेविन जैसे पोस्ट मॉडर्न लेखक आए हैं, जो यथार्थ और भ्रम की दुनिया में खेलते हैं। दूसरी तरफ लोकप्रिय विधाएं खूब फल फूल रही हैं, जासूसी उपन्यास, थ्रिलर, साइंस फिक्शन। साहित्य अब भी रूस के अतीत और भविष्य के सवालों से जूझ रहा है, लेकिन शायद ज्यादा बिखरे हुए अंदाज में।
तो ये तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर उभर रही है रूसी साहित्य की। अगर हम इस पूरी चर्चा के कुछ मुख्य सूत्र, कुछ बड़े संदेश निकालना चाहें तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से पहला तो,
हाँ, पहला और सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि हमें उस लेखक भविष्यवक्ता वाले मिथक से सावधान रहना चाहिए। केली इसे तोड़ती हैं, दिखाती हैं कि ये कैसे गढ़ा गया।
हालांकि ये भी सच है, ऐसा कुछ और स्रोत बताते हैं कि रूसी लेखकों ने अक्सर समाज के नैतिक प्रहरी की भूमिका निभाई है, शायद दुनिया में कहीं और से ज्यादा।
हाँ, तो ये एक जटिल तस्वीर है, एक पहेली है।
ये कुछ वैसा ही है जैसे भारत में भी हम कुछ कवियों या लेखकों को समाज की आत्मा की आवाज मानते हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी, उनके राजनीतिक जुड़ाव भी होते हैं। खैर, दूसरा बड़ा संदेश।
दूसरा है साहित्य, पहचान और साम्राज्य का गहरा रिश्ता। केले दिखाती हैं कि साहित्य सिर्फ पहचान दिखाता नहीं, उसे बनाता भी है।
कैसे?
रूसी साहित्य ने रूसीपन को परिभाषित करने, पश्चिम से अपने रिश्ते तय करने और हाँ, साम्राज्य को सही या गलत ठहराने में, दोनों में अहम भूमिका निभाई।
इसकी गूंज तो हम अपने आप ही महसूस कर सकते हैं, आज़ादी की लड़ाई के दौरान या आज भी क्षेत्रीय पहचानों और राष्ट्रवाद को लेकर साहित्य में बहस चलती रहती है। तीसरा संदेश क्या होगा?
तीसरा है कैनन से आगे देखने की जरूरत। सिर्फ महान श्वेत पुरुषों को पढ़ना काफी नहीं है, केली महिलाओं, गैर रूसी लेखकों, लोकप्रिय विधाओं, इन सब की अहमियत पर जोर देती हैं।
यानी मार्जिन की आवाजों को सुनना होगा।
हाँ,
ये तो बहुत जरूरी बात है।
हाँ,
भारत में भी दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, महिला लेखन को मुख्य धारा में लाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। चौथा संदेश?
चौथा है सेंसरशिप और रचनात्मकता का वो अनोखा रिश्ता। सेंसरशिप बुरी चीज है यकीनन, लेकिन केली दिखाती हैं कि कैसे इसने अनजाने में रूसी लेखकों को और ज्यादा हुनरमंद बना दिया।
अच्छा।
साहित्य ने जबरदस्त दबाव में भी जिंदा रहना और खुद को ढालना सीखा।
कमाल है, जैसे दबाव में हीरा बनता है। और पांचवा और आखिरी संदेश क्या निकालें?
वो है साहित्य का एक नैतिक प्रयोगशाला होना, एक लैब की तरह।
नैतिक प्रयोगशाला?
हाँ, रूसी साहित्य की ये खासियत रही है कि वो बड़े नैतिक और दार्शनिक सवालों से जूझता है और दुख को सिर्फ एक नकारात्मक चीज की तरह नहीं देखता। जैसा एक स्रोत कहता है, रूसी साहित्य में दुख में भी बदलाव की एक गहरी समझ हासिल करने की संभावना छिपी होती है।
ये तो जिंदगी के अनुभव जैसा है। मुश्किल हालात हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। वाकई ये किताब सोचने पर मजबूर करती है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे ये विचार के रूसी साहित्य को एक रहस्यमय राष्ट्रीय आत्मा को दर्शाने वाले पवित्र दर्पण के रूप में नहीं बल्कि गतिशील कार्यशाला के रूप में समझा जाना चाहिए, जहां रूस और रूसीपन के विचार को गढ़ा गया, उस पर बहस हुई और उसे लगातार पुनः परिभाषित किया गया।
मतलब साहित्य सिर्फ आईना नहीं, औजार भी है पहचान बनाने का।
बिल्कुल, या फिर ये रूसी लेखक का पंथ एक भविष्यवक्ता और शहीद के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति के सबसे शक्तिशाली और भ्रामक मिथकों में से एक है। ये वास्तविक लोग थे जो एक जटिल राजनीतिक दुनिया में काम कर रहे थे, साहित्यिक संत नहीं।
हाँ, ये हमें लेखकों को इंसानी नजरिए से देखने को कहता है, देवता तुल्य बनाने से रोकता है।
और ये भी बहुत जरूरी है, रूसी साहित्य की बात करना तुरंत साम्राज्य के सवाल का सामना करना है। हमें जो कैनन विरासत में मिला है वो मुख्य रूप से शाही केंद्र का साहित्य है।
ये याद दिलाता है कि साहित्य का इतिहास सत्ता के इतिहास से जुड़ा है और हमें हाशिए की आवाजों को खोजना होगा।
एक और बात जो मुझे बहुत दमदार लगी, रूसी साहित्य मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि आवश्यकता के रूप में उभरा। उन सवालों को संबोधित करने का एक तरीका जो कहीं और नहीं पूछे जा सकते थे।
हाँ, ये साहित्य को एक गंभीर सामाजिक भूमिका देता है, खासकर मुश्किल राजनीतिक दौर में।
और अंत में दुख पर वो नजरिया, रूसी साहित्य में दुख कभी भी केवल विनाशकारी नहीं होता, ये हमेशा संभावित रूप से परिवर्तनकारी होता है।
ये हमें दुख को सिर्फ झेलने के बजाय उसमें अर्थ खोजने की प्रेरणा देता है। अच्छा, ये सब विचार तो बड़े गहरे हैं, लेकिन क्या इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कुछ लेना देना है?
मुझे तो लगता बिल्कुल है। सबसे पहले तो ये किताब हमें आलोचनात्मक ढंग से सोचना सिखाती है, क्रिटिकल थिंकिंग।
वो कैसे?
हम अपने आसपास की कहानियों पर, अपने नायकों पर, अपने राष्ट्रीय मिथकों पर सवाल उठाना सीख सकते हैं। कौन सी कहानी बार बार सुनाई जाती है और कौन सी जानबूझकर छुपाई जाती है।
हाँ, और ये हमें कला और सत्ता के रिश्ते को समझने में मदद करता है, चाहे वो फिल्में हों, टीवी शोज हों या खबरें। हम उनमें छिपे राजनीतिक संदेशों को बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं,
समझ सकते हैं कि कौन क्या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है।
सही कहा। और वो समावेशिता वाली बात, जैसे केली ने हाशिए की आवाजों को खोजा, हम भी अपने समाज में अपने आसपास उन लेखकों, कलाकारों, संगीतकारों को खोज सकते हैं जिन्हें उतनी पहचान नहीं मिली है।
इससे हमारी दुनिया और समझ दोनों बड़ी होंगी।
बिल्कुल, और वो पंक्तियों के बीच पढ़ने का हुनर, वो तो सिर्फ साहित्य पढ़ने में ही काम नहीं आता।
नहीं नहीं, रोज की बातचीत में, ऑफिस के ईमेल में, नेताओं के भाषणों में कहां क्या छिपा है, क्या अनकहा है, ये समझने में भी मदद मिलती है।
सही कहा। और वो नैतिक प्रयोगशाला वाली बात, रूसी साहित्य हमें मुश्किल नैतिक दुविधाओं के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है।
हाँ, किरदारों के संघर्षों से हम सीखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में फैसले कैसे लिए जाते हैं, सही गलत के मायने क्या होते हैं। ये हमें ज्यादा संवेदनशील इंसान बना सकता है।
तो इस पूरी बातचीत से, इस गहन पड़ताल से आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही? व्हाट्स योर बिग टेक अवे?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि रूसी साहित्य या शायद कोई भी साहित्य कोई बंद म्यूजियम नहीं है।
नहीं,
ये एक चलती फिरती जिंदा बहस है, पहचान, सत्ता, नैतिकता, इंसान होने के मतलब के बारे में। केली की किताब ने मेरी आंखों से वो पर्दा हटा दिया जो रूसी साहित्य को सिर्फ कुछ गिने चुने नामों और विषयों तक सीमित रखता था। ये दुनिया तो बहुत बहुत बड़ी और पेचीदा निकली।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कैसे सेंसरशिप जैसी नकारात्मक चीज भी, मतलब अनजाने में, रचनात्मकता को एक नया मोड़ दे सकती है, उसे और गहरा बना सकती है। ये दिखाता है कि इंसानी रचनात्मकता कितनी लचीली और जिद्दी होती है।
हाँ, और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि कैसे केली ने महिलाओं और दूसरे हाशिए पर पड़े समूहों को कहानी के बीचों बीच ला खड़ा किया। ये याद दिलाता है कि इतिहास कभी पूरा नहीं होता, उसे हमेशा अलग अलग नजरियों से देखने और दोबारा लिखने की गुंजाइश रहती है।
बिल्कुल, ये किताब हमें याद दिलाती है कि साहित्य सिर्फ वक्त काटने का जरिया नहीं है बल्कि दुनिया को समझने, इंसानी अनुभवों की गहराइयों में उतरने और हाँ, खुद पर सवाल उठाने का एक शक्तिशाली औजार है।
तो इसी सोच के साथ एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, क्या हमारे अपने साहित्य, हमारी अपनी कहानियों में भी ऐसे मिथक हैं जिन्हें तोड़ने की जरूरत है? कौन सी आवाजें हैं जिन्हें हमने अब तक अनसुना किया है? इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकात्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।